ये आकाशवाणी है। सामयिकी में प्रस्तुत है साइबर आतंकवाद से निपटने के वैश्विक प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं साइबर विशेषज्ञ जितेन कुमार जैन और पत्रकार सिमरन सोढ़ी।
पेरिस में कल जो एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, क्राइस्टचर्च कॉल फॉर एक्शन, यानी कि जो क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में हाल ही में एक हमने देखा बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुआ है, उसको लेकर एक जो इनिशिएटिव फॉर्म किया है भारत ने और 26 दुनिया के देशों ने मिलकर कि इंटरनेट पर जो हम कंटेंट देखते हैं, जो वीडियो देखते हैं या जो ऐसी बातें होती हैं जिससे आतंक को एक इम्पेटस मिलता है, उसको कंट्रोल किया जाए। भारत ने इस कॉल फॉर एक्शन है उसको ज्वाइन किया है, पर सवाल ये उठता है कि इंटरनेट को रेगुलेट करना कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा।
देखिए, इंटरनेट को तो रेगुलेट इस समय नहीं किया जा सकता, कम से कम कोई एक सरकार इसके बारे में फैसला ले नहीं सकती। पहले एक तरह से अमेरिका की इसके ऊपर मोनोपोली थी और पिछले 5 साल से हमने देखा है कि मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल जो है इंटरनेट गवर्नेंस के अंदर आया है, जहां कई सरकारें, उनके प्रतिनिधि और कई जो बड़ी कंपनियां हैं उनके प्रतिनिधि मिलकर इंटरनेट के भविष्य के बारे में फैसले ले रहे हैं। जो क्राइस्टचर्च कॉल फॉर एक्शन है, ये संदर्भ में है कि क्राइस्टचर्च में जो मास शूटिंग हुई, जिस तरह से एक आतंकवादी ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और उस घटना का प्रसारण उन्होंने फेसबुक लाइव जो एक फीचर होता है उसको यूज करके फेसबुक पे वो आधे घंटे का उन्होंने पूरा का पूरा वो वीडियो उन्होंने वहां पे फेसबुक पे प्रसारण लाइव उसका किया। तो एक ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था कि क्यों फेसबुक ने ऐसे एक वीडियो को ब्रॉडकास्ट होने दिया, उसको रोका क्यों नहीं। और दूसरी तरफ फेसबुक का भी ये था कि जो पब्लिक में ब्रॉडकास्ट किया गया, हमारे यहां एक किसी भी कंटेंट को फेसबुक पर रिपोर्ट करने का फीचर है, एक भी व्यक्ति ने जिसने वो वीडियो देखा उसको शायद फ्लैग नहीं किया या रोका नहीं, या शायद हो सकता है किसी ने ध्यान में नहीं दिया हो। तो जो आउटरेज थी वो कम से कम इस बात को लेकर थी कि कब तक हम इस तरह से रहेंगे कि ये कोई भी आतंकवादी, आज इंटरनेट का इस्तेमाल अभी तक तो खाली एक तरह से प्रोपोगंडा करने के लिए, रेडिकलाइज करने के लिए हो रहा था। ISIS ने इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत व्यापक तरीके से रिक्रूटमेंट के लिए किया, स्काइप कॉल्स पे इंटरव्यू लिए गए, तो अपने अपने प्रोपोगंडा को करने के लिए ISIS ने ये सब किया। पर एक अब नया दौर आया कि पहले क्या था कि जो किलिंग होती थी या बिहेडिंग थी उसका वीडियो यूट्यूब पे डाला जाता था, तो कहीं ना कहीं एक मौका सरकारों के पास होता था कि इससे पहले कि वो तेजी से फैले आप उसको हटा दें। जो लाइव ब्रॉडकास्ट है ये अपने आप में एक बड़ा अजीब है, बिकॉज जो अभी तक जो शक्ति थी ये खाली ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास थी, आज वो सोशल मीडिया पे आपने जो बड़ी रीच है उससे बिना किसी सेंसरशिप पे आपने लोगों को एक मास किलिंग का वीडियो आपने ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो उसको लेके एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ। और ये भी इसका एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि भारत जैसे देश जो पिछले 15-20 सालों से कह रहे हैं कि इंटरनेट पे जो ये हेट कंटेंट और टेरर कंटेंट बढ़ता जा रहा है, JUD जैसी ऑर्गेनाइजेशन, लश्कर ए तैयबा, हाफिज सईद जैसे लोग जो प्रोस्क्राइब टेररिस्ट हैं ऑर्गेनाइजेशन से, ये लोग भी अपने अपने ट्विटर अकाउंट बना के, फेसबुक अकाउंट बना के लोगों को बहला रहे थे, तो उस समय विदेशी कंपनियों ने या वेस्ट की कंपनीज ने इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता था कि हम कंटेंट रेगुलेशन के उसमें जाना नहीं चाहते, हम जज नहीं बनना चाहते क्या सही है गलत है। जो आपके लिए आतंकवाद है किसी के लिए फ्रीडम स्ट्रगल था, जो आपके लिए टेररिस्ट स्पीच हो किसी और के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच था। मगर अब श्रीलंका में जो हुआ, 250 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, भारत के अंदर हमले हुए, ब्रिटेन के अंदर हमले हुए, स्टैबिंग्स हुई, मास जो लोन बॉम्बर था वो ऑनलाइन रेडिकलाइज हुआ, और ISIS जैसी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पांसिबिलिटी ले रही है, तो विश्व को यह समझ में आ रहा है कि इंटरनेट का इस्तेमाल जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों के लिए हो रहा है, अगर समय रहते लगाम नहीं लगाई तो वर्ल्ड के अंदर केओस फैल जाएगा। इसीलिए आज 26 सरकारों ने, 10 सबसे बड़ी कंपनियों ने मिलकर यह फैसला किया है कि हम आपस में बैठकर संवाद वॉलंटरी तरीके से टेरर कंटेंट जो इंटरनेट पर आता है हम उसको हटाएंगे।
दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान है जिसके पास अपना एक फेसबुक अकाउंट नहीं है। फेसबुक हम देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, आज ये बहुत कॉमन चीजें हो गई हैं। जो आज से 10 साल पहले जो हम ट्रेडिशनल मीडिया कहते हैं कि टेलीविजन था या न्यूज़पेपर थे, उन चीजों पर लोग अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी खबर लेने के लिए रिलाई करते थे। आजकल शायद उस चीज को काफी जल्दी से एक रिप्लेस किया जा रहा है। गूगल ने रिप्लेस किया है, फेसबुक ने रिप्लेस किया है। सवाल ये उठता है कि फेसबुक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, उस पर कंटेंट है, हर किसी का एक्सेस है, तो एक जो फेसबुक की रेगुलेशन को लेकर बात हो रही है उसका सक्सेस हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस बात का मुद्दा हमने अमेरिका में भी देखा है जहां फेसबुक के मालिक, उनको सेनेट में बुलाया गया है हेयरिंग के लिए, तो जो एक प्रॉफिट मेकिंग वेंचर है उसको भी हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
ये कंपनियां जो थी ये हमेशा अपनी कंटेंट रेगुलेशन की या कंटेंट की जिम्मेदारी से भागती रही, इन्होंने बहुत पैसा कमाया, टैक्स देने में हमेशा आनाकानी करी। आज भी ये कंपनियां अभी 2 साल पहले तक भारत के अंदर कोई टैक्स अदा नहीं कर रही थी, जबकि 7 करोड़ से ज्यादा लोग इनका फेसबुक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे थे, जो एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन दिखाए जाते थे उस पर भी कभी इन्होंने टैक्स नहीं भरा, और ये अक्रॉस द वर्ल्ड था। पर अब कहीं ना कहीं सबको समझ में आ रहा है, सरकारें भी जागरूक हुई हैं और उनको भी लगा है कि ये कंपनियां अपने आप में एक वैश्विक सरकारें बन चुकी हैं, जो देशों की सरकार है उनसे ज्यादा डेटा और जानकारी इन कंपनियों के पास है। वर्ल्ड के तीन सबसे बड़े देशों की टोटल आबादी से ज्यादा आबादी आज फेसबुक यूजर्स की है, तो इनकी शक्ति को सरकारें पहचान रही हैं। और पहले न तो देशों के अंदर कानून थे, न उनको तरीका कोई समझ में आ रहा था किस तरह से इनको रेगुलेट किया जाए, और जिनको समझ में आया उनके सामने भी एक चुनौती थी कि कंपनियां सिर्फ अमेरिका की ज्यूरिडिक्शन मान रही थी। मगर अब पिछले 4-5 साल में स्थितियां बदली हैं, मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल आया है और कई देशों के अंदर सरकारें जो है बड़ी अग्रसर हुई है। फेसबुक को एक तरह से मतलब धमकाया भी गया कि अगर आपने देश के कानूनों को नहीं माना तो बैन भी कर दिया जाएगा। भारत के अंदर जैसे शुरू में व्हाट्सएप ट्विटर के प्रतिनिधियों ने मना जब किया पार्लियामेंट्री कमेटी में, उनको भी समन भेजे गए। कैम्ब्रिज एनालिटिका की इन्वेस्टिगेशन हुई अक्रॉस द वर्ल्ड। सरकारें बदली जा रही है फेसबुक के ऊपर, इन्फ्लुएंस करी जा रही है, और कहीं ना कहीं सरकारों को भी अब पता है कि इन कंपनियों को कानून के दायरे में लाना बहुत जरूरी है, और कंपनियों को भी पता है कि अगर उन्होंने वॉलंटरी तरीके से सरकारों के साथ कोऑपरेट नहीं किया तो कहीं ना कहीं कानून का डंडा दिखाकर इनको एक तरह से जो है फंसाया जा सकता है। तो और तीसरा, सभी लोग चाहते हैं कि इंटरनेट एक अच्छी जगह बने जहां पे लोग आपस में संवाद करें, आपस में जुड़े, और किसी भी एक अच्छे राष्ट्र या अच्छी कंपनी के लिए आतंकवाद के लिए या वायलेंस के लिए इंटरनेट पर जगह नहीं है। और जो अमेरिका में हुआ, ब्रिटेन में स्टैबिंग्स हुई, जो यूरोप के अंदर हुआ, हमले हुए, कोशिशें हुई, तो इन कंपनियों को समझ में आ रहा है कि ये आतंकवाद की समस्या सिर्फ साउथ एशिया मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं है कि जो कुछ देश इससे चिंतित हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करके उन देशों का आतंकवाद भी आज मेनस्ट्रीम तरीके से अमेरिका और यूरोप में भी फैल रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हमारे नहीं तो कम से कम अपने देशों के हित के लिए कंपनियां कोऑपरेट करें। और इसीलिए अब ये हुआ है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जो श्रीलंका में हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ या भारत में होता आया है, इन टेरर फैक्ट्रीज को बंद करने के लिए कम से कम हम ये मिलकर सारे कोशिश करेंगे कि ट्रांसपेरेंट तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एक मेथड का इस्तेमाल करके सरकारें और कंपनियां मिलकर जितना हो सके टेरर कंटेंट को फ्लैग करेंगी, काउंटर स्पीच से उसको काउंटर करेंगी और हटाएंगी भी जहां जहां जरूरी है, बिना किसी फ्री स्पीच का, ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन करे हुए।
जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका एक उन देशों में से है जिन्होंने अभी तक इस जो डॉक्यूमेंट है इसको ज्वाइन नहीं किया है। अमेरिका का कहीं पर यह भी मानना है कि जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या एक इंडिविजुअल की जो आजादी है कि वो बोल सके जो वो बोलना चाहता है, उसको वो किसी तरह से कर्ब नहीं करना चाहते, तो इस डिबेट को कैसे संभालेंगे?
देखिए, चिंताजनक है कि आज अमेरिकी सरकार ने इसको मतलब जो है डिक्लेरेशन को या कॉल को साइन नहीं किया, मगर ये कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज नहीं है। पर अच्छी बात है कि 10 कंपनियां जो सबसे बड़ी कंपनी है सारी अमेरिकन कंपनियां हैं और उन्होंने साइन किया है, तो असली योगदान तो उन्हीं का होना है। जहां तक अमरीकी सरकार का सवाल है, ये जो दोहरे मापदंडों का, जो अमेरिका को गाली दे वो बुरा आतंकवाद, जो भारत में धमाके करे वो अच्छा आतंकवाद, ये तरह उनका डिफ्रेंशिएशन था। पर जब 9/11 का हमला हुआ तो उन्हें आंखें खुल गई, समझ में आ गया कि ये अच्छा बुरा आतंकवाद कुछ नहीं, ये सबके पीछे पड़ेगा। तो जो दोहरे मापदंडों का कोहरा अमरीकी आंखों के ऊपर है, ये भी बहुत जल्दी हट जाएगा। जिस तरह से इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल यूरोप में हमले के लिए हुआ, भारत में हमलों के लिए हुआ, श्रीलंका में हमलों के लिए हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ, उम्मीद करते हैं कि कभी अमरीका में ऐसा दिन देखना पड़े, उससे पहले पहले सरकार वहां पे चेते और वो भी इस कॉल के अंदर आए, और जो फर्स्ट अमेंडमेंट का वो जो हवाला दे रहे हैं शायद वो नेगोशिएशन टेबल पे कुछ आदान प्रदान करना चाहते हैं, पर बहुत जल्दी वो भी इस डिक्लेरेशन के अंदर आ जाएंगे।
ये जो पेरिस में डॉक्यूमेंट साइन हुआ है, इसको जो इनिशिएटिव को जो आगे लेकर गए हैं वो फ्रांस के लीडर हैं और न्यूजीलैंड के लीडर हैं। तो ये जो एक हम कहते हैं सेंसिटाइजेशन हुई है दुनिया की आतंक को लेकर, उसमें कितना योगदान रहा है इस डॉक्यूमेंट तक पहुंचने का कि आज 26 देश इस चीज को मानते हैं कि जो आतंक है वो शायद अब एक देश तक नहीं जुड़ा है पर ये सारी दुनिया का।
आपका बिल्कुल कहना सही है, जो इन देशों में घटनाएं हुई उन्हीं के कारण इनकी आंखें खुली हैं। कौन सोच सकता था पिछले 10 सालों में एलटीटी का आतंकवाद खत्म होने के बाद श्रीलंका जैसे एकदम पीसफुल देश में जहां क्राइम रेट भी इतना कम है वहां इतना बड़ा हमला हुआ कि 250 लोगों को मार दिया जाएगा, और बाद में एक संगठन जो आज से मिलो दूर दो कॉन्टिनेंट अपार्ट जो मिडिल ईस्ट में बैठा है उसकी जिम्मेदारी लेगा? किसने सोचा था एक आदमी खाली इंटरनेट पर इंस्पायर होकर 50 लोगों को मौत के घर उतार देगा? किसने कभी सोचा था कि पेरिस जैसे शहर में मास मर्डर्स होंगे, सड़कों पे लोगों को मारा जाएगा, स्टैबिंग्स होंगी? तो जो सबसे ज्यादा पीसफुल राष्ट्र जहां कभी मतलब इस तरह की घटनाओं के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, वहां आतंकवादी हमले होना अपने आप में उनकी आंखें खोलना और बहुत बड़ी चिंता का विषय था, और ये अच्छी बात है। और ये मुल्कों के लिए भी हमने भी समर्थन किया है, चाहे न्यूजीलैंड हो, पेरिस हो, श्रीलंका हो, सारी सरकारों को मिलकर इसको रोकना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में ये मॉन्स्टर की तरह पैदा हो जाएगा।
शुक्रिया,
धन्यवाद।
सामयिकी में अभी आप सुन रहे थे साइबर आतंकवाद से निपटने के वैश्विक प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे साइबर विशेषज्ञ जितेन कुमार जैन और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com. NIC.IN